पंचास्तिकाय संग्रह लेक्चर नंबर 124. ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सौवसाहूनं इन्द्रकलवन्द्यानं तिमुवणहितमधुरविशद वक्काणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिनाणम् इदभवाणम्। आचार्य कुंदकुंद द्वारा रचित जो पंचास्तिकाय संग्रह नामक शास्त्र है, उसके हम 118 नंबर की गाथा को देखते हुए पृष्ठ क्रमांक 40 पर आए हैं। क्या कह रहे हैं, अभी तक तो हमने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, इनकी बात देखने की कोशिश की थी। आज हम पंचेंद्रियों की बातों को देख रहे हैं। यहाँ पर हमने गाथा भी पढ़ी थी, अन्वयार्थ भी पढ़ा था, तात्पर्य वृत्ति भी पढ़ी थी। अभी जो समय व्याख्या है उसका अनुवाद हम देखते हैं। अनुवाद इंद्रियोना भेदनी अपेक्षाएं केवामा आवेला जीवोनो चतुर्गति संबंध दर्शावता उपसंहार छे। यानी अभी कंक्लूड करेंगे। अर्थात अहीं एकेंद्रिय दी इंद्रियादि रूप जीव भेदनो चार गति साथे संबंध दर्शावीने ते जीव भेदोनो उपसंहार करवामा आवे छे। देखो, यहाँ पर हम आपको बात बताना चाहते थे, वो बात ऐसी है कि जब हम छह द्रव्य को देख रहे हैं, सुनना हो अभी आराम से, छह द्रव्यों को देख रहे हैं तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए अपना परिणमन करे इसके लिए रुका हुआ नहीं है। वहाँ ऐसा कहेंगे कि परद्रव्य तेरा परिणमन नहीं करता है, तेरे द्रव्य में से ही पर्याय की उत्पत्ति होती है। यानी परद्रव्य करता और मेरा यहाँ कार्य हो जाए, ऐसी कभी बात नहीं होती। लेकिन हम छह द्रव्यों में से हटकर सिर्फ जीव द्रव्य में आएंगे, तो जीव द्रव्य में आएंगे तो वहाँ जीव द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक गुण स्वतंत्र है और पर्याय स्वतंत्र है। पर्याय तो द्रव्य में से आते थे, द्रव्य की तरफ उसकी मेहरबानी रही ना, गुण के तरफ से आई थी, गुण की मेहरबानी रही ना। यहाँ तो कह रहे कि द्रव्य भी स्वतंत्र है, गुण भी स्वतंत्र है और पर्याय भी स्वतंत्र है। यानी पर्याय उत्पन्न होने में ना उसको परद्रव्य की अपेक्षा है, ना स्वद्रव्य की है, स्वगुण की है। अभी ऐसा कहेंगे कि अभी जो 10 नंबर की पर्याय, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनादि से चल रही है, हम एग्जाम्पल तरीके बोलते हैं, 10 नंबर की पर्याय आनी है तो 9 नंबर की पर्याय का व्यय हुआ और 10 नंबर की पर्याय उत्पन्न हुई, ऐसी पर्याय की भी वहाँ कोई अपेक्षा नहीं है। तो जो 10 नंबर की पर्याय, यानी ऐसा होगा ना कि अरे इसका मिथ्यात्व चला और मिथ्यात्व में से सम्यक तो हुआ, लेकिन मिथ्यात्व में से सम्यक तो होने में एक समय लगता है। यानी मिथ्यात्व से सम्यक तो हुआ ऐसी भी बात नहीं है। यानी इसको तत्व की भाषा में कहेंगे, वर्तमान द्रव्य का जो वर्तमान कालीन जो कोई द्रव्य है उसका भूतकालीन वर्तमान कालीन जो पर्याय है उसकी भूतकालीन पर्याय में अभाव है, उसको प्राग भाव बोलते हैं। अभी वो आपका हुआ नहीं है प्राग भाव, तो कहते हैं कि क्योंकि अगर हम ऐसा मान लें कि पहली पर्याय के कारण से दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई है तो फिर मिथ्यात्व के कारण से सम्यक तो हुआ ऐसा मानना पड़ेगा। तो प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं के जन्म क्षण से, जिसको कहेंगे यानी अपने स्वयं से उत्पन्न होती है, वहां उसको ना द्रव्य की अपेक्षा है, ना गुण की अपेक्षा है, ना पर द्रव्यों की अपेक्षा है। वहां कहेंगे कि पर्याय अपने स्वयं से उत्पन्न होती है। अभी यहां क्या कह रहे हैं कि पर्याय का समय कितना है, तो कह के एक समय है, और तू कब से है, मैं तो अनादि अनंत हूं। तो अनादि अनंत ये बड़ा है या एक समय की पर्याय बड़ी है? हमें अगर अपने स्वभाव का अनुभव करना है, हमारे स्वरूप को समझना है, तो जो कांस्टेंट रहेगा उसी का हम आधार ले सकते। एक समय की पर्याय तो मति शुद्ध ज्ञानी को ज्ञान में भी नहीं आती है, तो ज्ञान कहां उसको पकड़ेगा। जो त्रिकाली द्रव्य है, जो कायम टिकता है, उसका आश्रय लेगा। तो वो जो त्रिकाली कायम टिकने वाला द्रव्य है, उसमें किसी भी प्रकार की यानी अच्छी या बुरी या विभाव या स्वभाव, कोई भी पर्याय त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। तो हमें नजर कहाँ करनी है, त्रिकाली द्रव्य पर नजर करनी है। इधर उधर देखने की जरूरत है, मेरे में क्षायिक परिणाम आया कि नहीं, क्षायिक समय तो हुआ कि नहीं, नहीं तो तेरी नजर कहाँ है, पर्याय पे गई है। मेरे में राग हुआ क्या, हाँ तेरी पर्याय पे नजर है। तेरा स्वभाव कैसा है कि राग रहित है, वीतराग है, केवल ज्ञान स्वभाव तेरा स्वभाव है। तो ये अखंड अभेद ऐसा जो द्रव्य है उसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। उसमें भी केवल ज्ञान स्वभाव की तरफ देखूं कि केवल दर्शन स्वभाव की तरफ देखूं, ऐसा भेद भी नहीं करना है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ कोई भी चार भावों में से कोई भी भाव पर्याय रूप जो है वो त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। तो अभी हमको कहाँ देखना रहा, जो त्रिकाली द्रव्य है उसके तरफ। वहां ये पर्याय कहाँ से आई, कहाँ से आती है, उसकी बात ही नहीं है। वो हम जब द्रव्य को देख रहे हैं तो द्रव्य में ये कोई बातें है ही नहीं, बस तब अपना उपयोग वहां जाएगा। अभी हमारे घर में आपको तो एक ही बेटी है ना, हमारे बाप को चार बेटे थे, पिताजी को चार बेटे, तो मेरी शादी होनी थी, मैं सबसे छोटा था, तो गीत किसके गाएंगे, बड़े भाई के, सबसे बड़ा है ना। अरे उसको तो चार बेटे हो गए, उसका तो गीत गाना चाहिए कि नहीं, बोले तो जिसकी शादी चल रही है उसके गीत गाएंगे। वैसे यहाँ द्रव्य की बात चल रही है तो पर्याय की तरफ नजर ही नहीं करो ना। अरे पर पर्याय उसमें से आती ना, हाँ आती है ना बाबा, पर त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। यहाँ क्या कहते, जिस त्रिकाली द्रव्य पर नजर रखते हुए जिसको क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ है, वह क्षायिक सम्यक दर्शन भी त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। ऐसा शांति से सोचना। आज रात को आपको नींद नहीं लेनी है ना, तो आपको अभी सब मैटर दे देता हूँ, तो बराबर सोचना, बराबर याद आएगी। ये तो विषय अपने पहले पीरियड का हो गया, अभी यहाँ क्या कह रहे देखते हैं। देवगति नाम अने देवायुना उदय थी, अर्थात देवगति नाम कर्म अने देवायु कर्मना उदयना निमित्त थी देवो होय छे। यानी जीव के जैसे भाव है उस भाव के अनुसार उसको देवगति मिलती है, लेकिन यह कर्मों की अपेक्षा से, निमित्त लिखा ना बेन, तो कह रहे हैं देवगति नाम कर्म अने देवायु नाम कर्मना उदयना निमित्त थी देवो होय छे। हमने ऐसे परिणाम किए कि हम एक इंद्रिय में जन्मे और हमको देवगति मिले, ऐसा नहीं होगा। अब हमने देवगति बांधी है मान लो, तो और एक इंद्रिय में गए तो वहां भी देवगति जो है वो तिरिंच गति रूप टर्न होकर उदय में आएगी, क्योंकि जिसका पीरियड पूरा हो गया है वो कर्म तो उदय में आने से रहा, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो अन्य रूप से आएगा। अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, तो हमने पूर्व में क्या बोलते हैं, नरक गति बांधी है, नरक गति बांधी है, तो उसका उदय अभी आना है, तो वो नरक रूप से नहीं आएगा, वो तो मनुष्य गति रूप से ही आएगा। तो अभी हम बहुत गुस्सा करते हैं, ऐसा करते हैं, मारामारी करते हैं, देखो ये नारकी जैसा बिहेव कर रहा है, ऐसा बोलते लोग, वो नारकी जैसा नहीं है, वे तो कहने के लिए नारकी है। ख्याल में है? तेवो यानी देव, तेवो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क અને વૈમાનિક એવા નિકાય ભેદોને લીધે ચાર પ્રકારના છે. મનુષ્ય ગતિ નામ અને મનુષ્યાયુના ઉદયથી મનુષ્યો હોય છે તેવો કર્મભૂમિજ અને ભોગભૂમિજ એવા ભેદોને લીધે બે પ્રકારના છે. તિરંચ ગતિ નામ અને તિરંચાયુના ઉદયથી તિરંચો હોય છે તેવો પૃથ્વી એટલે એકેન્દ્રિય, શંભુક એટલે બે ઇન્દ્રિય, જૂ તિનિન્દ્રિય, ડાસ ચર્તુરિન્દ્રિય, જળચર ઉરગ પક્ષી, સરીસર્પ પરિસર્પ, ચતુષ્પાદ ચોપંગા ઇત્યાદિ ભેદોના લીધે અનેક પ્રકારના છે. ચોપગા પંગા ને ચોપગા એને ચાર પહેરવાલે ઇત્યાદિ ભેદોને લીધે અનેક પ્રકારના છે. એ પેજ નંબર 40 નીચે સી થર્ડ લાઈન. નરક ગતિ નામ અને નરકાયુના ઉદયથી નારકો હોય છે તેવો રત્નપ્રભા ભૂમિજ. એ પહેલે પૃથ્વી કા નામ દો પ્રકાર સે લિયા જાતા હૈ, એક રત્નપ્રભા નામ હૈ, દૂસરા માલુમ હૈ નામ? મેઘા. કોઈ બાત નહીં. રત્નપ્રભા ભૂમિજ, શર્કરા પ્રભા ભૂમિજ, વાલુકા પ્રભા ભૂમિજ, યાને ભૂમિ મે જન્મને વાલે જ. પહેલે પૃથ્વી કા નામ હૈ, યાને પહેલે નરક કા નામ હૈ રત્નપ્રભા, દૂસરે કા નામ હૈ શર્કરા પ્રભા, તીસરે નરક કા નામ હૈ વાલુકા પ્રભા, ચોથે પંક પ્રભા. અભી હમ યહાં જો હૈ વો પઢતે હૈ. પંક પ્રભા ભૂમિજ, ધૂમ પ્રભા ભૂમિજ, તમઃ પ્રભા ભૂમિજ અને મહાતમ પ્રભા ભૂમિજ એવા ભેદોને લીધે સાત પ્રકારના છે. તેમાં દેવો મનુષ્ય અને નારકી પંચેન્દ્રિય જ હોય છે. અભી યહાં તો ઓર થોડા સા ઉસમે હમ જોડ સકતે હૈ, સંગી પંચેન્દ્રિય જ હોઈ શકે છે. કિસમે? તીન ગતિ કે જીવ, દેવગતિ કા જીવ, મનુષ્ય ગતિ કા જીવ ઓર નારકી, એ સારે કહેશે સંગી પંચેન્દ્રિય હી હૈ. તિર્યંચે તો કેટલાક પંચેન્દ્રિય હોય છે અને કેટલાક એકેન્દ્રિય, દ્વિઇન્દ્રિય, ત્રિઇન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને અસંગી પંચેન્દ્રિય પણ હોય છે. આપણે સમજને કે લીએ મેં પડ રહો અભી ગુરુદેવ શ્રી ક્યાં બતાતે દેખતે હૈ. આ જીવ અધિકાર છે, જીવનો સ્વભાવ જ્ઞાન ને દર્શન છે. ક્યાં બતાએ બેન? સ્વભાવ કભી આપણે જીસકા સ્વભાવ હૈ ઉસસે દૂર હોગા કે નહીં? તો આપને બોલા અરે જ્ઞાન નહીં ઉસમે. હા જ્ઞાન હૈ, પણ મતિ જ્ઞાન સ્વભાવ મેં નહીં. મતિ જ્ઞાન પર્યાય હોય ને, ખ્યાલ મેં? શુદ્ધ જ્ઞાન નહીં હૈ, સ્વભાવ મેં નહીં, એ વાત પતા રહે. તો ક્યાં કહા? જીવનો સ્વભાવ જ્ઞાન ને દર્શન છે. તેની રૂચિ છોડી અને સ્વભાવની રૂચિ છોડી જે જીવ સંયોગની અને વિકારની ભાવના કરે છે તે નામ કર્મ ઉપાર્જન કરે છે ને તેને લીધે સંસારમાં જન્મ મરણ કરે છે. દેખો યહાં પર બહુત અચ્છી બાત બતા રહે હૈ. હમ લોગ ક્યાં કરતે હૈ કે આપણે સ્વભાવ કી રૂચિ નહીં. અરે ઉસકા સ્વભાવ હિ કેસા માલુમ નહીં તો ઉસકે પ્રતિ રૂચિ કહાં સે હોગી? તો રૂચિ કરવા છોડીને ક્યાં કર રહે? સંયોગ કે તરફ લગ રહે. અમારા અમારો ઉપયોગ કહાં હૈ? સંયોગ કોણ સા? અરે નહીં પૈસા તો ચાહીએ સાહેબ, પૈસે કે બિના ક્યાં કે કોઈ જી સકતા હૈ કે પૈસે કે બિના? તો મેરા આપસે પ્રશ્ન હૈ, સિદ્ધ જીવ જીતે હૈ કે નહીં? કિતના પૈસા હૈ ઉનકે પાસ? હા નારકી વો તો જીવ હૈ ને, કિતના પૈસા હૈ ઉસકે પાસ? અરે તિરંચ અનંતો મેં હૈ, કિતના પૈસા હૈ? સિર્ફ એક મનુષ્ય હિ એસા ગધા હૈ કે પૈસે કે બિના નહીં ચલેગા. હા હમરે તો પૈસે તો જોડે, લાઇટ કે બિના નહીં ચલેગા, એસી બાત હો રહી. देखो क्या कह रहे हैं कि जे जीव सही। हाँ सर,
गधे को काली क्यों कह रहे हैं? मनुष्य ऐसा गधा है कह रहे हैं, तो गधा गधे को तो ऐसा नहीं।
गधा का अर्थ पागल है, जिसको कोई अक्कल नहीं है। सर, विकार नहीं भावना करे छे। विकार यानी क्या? ब्रह्मा विकार किसको कहेंगे? मान्यता नहीं, राग यानी पुण्य पाप के परिणाम, उसको विकार का। देखो हम क्या करते हैं, जो कुछ दिन भर करते हैं वो संयोग कैसा हमको अच्छा प्राप्त हो। अरे भैया तुमको मालूम नहीं है, ऐसे ऐसे इतने बार हमने ये देखा हो, अभी पुणे में कि नमोकार मंत्र लिखने के लिए बोलते हैं, हजार लाख बार लिखो चलो खटाखट, तो बेचारे लिखते हैं क्यों? कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा। आपने भी लिखा है, बहुत अच्छा। स्वर्ग में मिलना हमसे, यानी देखो यहाँ जीव क्या कर रहा है, संयोग अच्छे मिले इसलिए विकार करता है, और उसकी क्या कहते हैं, उसकी भावना करता है। और किसकी भावना करनी चाहिए? अपने स्वभाव की रुचि छोड़ दी थी तो क्या होगा? तो नाम कर्म उपार्जन करे छे। नाम कर्म बांधने का एक कारण है कि अपने स्वभाव को नहीं जानना, उसमें रुचि नहीं करना, और संयोगों में और विकारों में भावना रखना। अने तेनी लीधे संसार में जन्म मरण करे छे। तो हमें ये नक्की करना है कि हमें संसार में ही जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। देखो अभी हम तो ऐसा कहेंगे, मैं मेरी बात बता तो आप अपनी समझ लेना, कि जब तक ये तत्वों की बात हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनी थी, तब तक तो हम ऐसा ही मानते थे कि बस कुछ नहीं, अपन तो अभी जवान हो गए हैं, हाँ पिताजी आग्रह करते इसलिए शादी कर रहे हैं, लेकिन पैसा कमाना, और इतना पैसा कमाना कि बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ जोड़ना न पड़े कि भैया दे दे, ये बस। तो हमने पैसा कमाने के लिए उम्र भर कोशिश की और बाद में मर गए। ऐसे ही जन्म मरण हो रहे हैं कि नहीं? देखो कि संयोग अच्छे मिले इसलिए कुछ शुभ परिणाम किए क्या? ऐसा हमने माना कि शुभ भाव करने से संयोग अच्छे मिलते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जाने दो, उसकी झगड़े में नहीं पड़ते अपन। तेनी लीधे संसार में जन्म मरण करे छे। तो हमको अपना भविष्य काल दुख में बिताना है या सुखी बनना है, ये तो पहले नक्की करें। आपका क्या इरादा है? दुखी नहीं बनना है, सुखी बनना है। तो सुखी बनने के लिए हमारे कौन
सुखी भी नहीं और लौकिक लौकिक सुखी नहीं की
बात है। सच्चे अतिनिर्य सुख प्राप्त करना,
तो उसके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि नहीं? इसलिए अतिनिर्य सुख कहाँ से प्राप्त होगा, इसकी भी हमें जानकर पहचान होनी चाहिए। अरे जहाँ मैं हूँ वही सुख स्वरूप मैं हूँ, सुख नो गोदाम छे, ऐसा गुरुदेव बोलते बार बार। यानी सुख मुझ में लबालब भरा हुआ है, लेकिन मेरी दृष्टि उधर जाती ही नहीं है। मैं तो सुख के लिए बाहर में किधर उधर इधर उधर घूमता हूँ। गुरुदेव की भाषा में कहते, स्त्री से सुख, पैसे से सुख, बच्चों से सुख, हाँ कारखानों से सुख, और न मालूम किसमें पर पदार्थ उनसे सुख। कहते सुख तो तू स्वयं भरा पड़ा सुख स्वरूप है, वहां तो बिल्कुल नजर नहीं करेगा, तो कैसा सा सुख प्राप्त होगा? तो कहते तेनी लीधे संसार मां जन्म मरण करे छे। केनी लीधे के पोताना स्वरूप नी रुचि करतो नथी तेनी कारणे। मेरे गुजराती समझ लेना हो। देव गति नाम कर्मना उदय थी देवनु शरीर मळे छे, ते सर्वती उत्कृष्ट भोग ने भोगवे छे। ते देवो चार प्रकारना छे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी अने वैमानिक, एम चार प्रकारना छे। पोतानो आत्मा सिद्ध समान छे, चार गति थी विलक्षण ने चैतन्य स्वभावती प्राप्त जेनु लक्षण छे, एवी सिद्ध गतिनी આત્માના ભાન સહિત જે ભાવના કરતો નથી તે ચતુર્ગતિ નામ બાંધી શુભ ભાવ કર્યા હોય તેના ફળમાં દેવરૂપે ઉપજે છે. વળી જે જીવ પોતાના સ્વભાવને ચૂકીને મનુષ્ય ગતિને લાયક શુભ ભાવ કરે છે તે મનુષ્ય થાય છે. કોઈ મનુષ્ય ગર્ભભૂમિમાં ઉપજે છે ને કોઈ મોટા આયુષ્યવાળા ભોગભૂમિમાં જન્મે છે. એ ભોગભૂમિ કી આયુ કિતની હોતી હૈ દક્ષાબેન આપ જાણતી હૈ? ઉત્કૃષ્ટ ભોગભૂમિ મનીષાબેન જાણતી હૈ? તીન પલ્ય પક્કા? ઓર જગન્ય આયુ ભોગભૂમિ કી? એક પલ્ય. એક કરોડ પૂર્વ પ્લસ એક સમય. ઇન જનરલ બોલેંગે, જનરલી કોમન જીસકો સામાન્ય પણ કહેંગે, ઉત્કૃષ્ટ ભોગભૂમિ કી તીન પલ્ય, ઓર મધ્યમ ભોગભૂમિ કી દો પલ્ય, ઓર જગન્ય ભોગભૂમિ કી એક પલ્ય. યે ઉત્કૃષ્ટ આયુ કી બાત હૈ. તો યે બહોત બડી બાત હોતી હૈ. ઇસલિયે ક્યા કહે રહે હૈ કે કોઈ મોટા આયુષ્યવાળા ભોગભૂમિમાં જન્મે છે, વર્તમાનમાં મોટા શેઠ ને લક્ષાધિપતિ થયા છે, તે ઉપાધિ ભાવને સેવીને થયા છે, આત્માના ધર્મથી સીટિયા થયા નથી. ઉપાધિ ભાવ એને ઔપાધિક ભાવ એને ઔદયિક ભાવ કે કારણ છે. હાજી આત્માનો ધર્મ જ્ઞાનાનંદમય છે, તેના વડે ઉપાધિ રહિતપણું થાય છે, થાય પણ તેના વડે પુણ્ય બંધાય નહીં. સ્વભાવને ચૂકીને ઉપાધિ ભાવના કારણે કર્મ બંધાય છે. વળી તિરંચ ગતિના જીવ એકેન્દ્રિયથી સંગી પંચેન્દ્રિય ઢોર સુધીના હોય છે. મન વગરના ને મનવાળા એમ બે પ્રકારના ઢોર હોય છે. ઢોર એને સમજમાં આવતા ના તિરંચ ગતિ કે જીવ કેસે બતાવ્યા ઉન્હોને કે એકેન્દ્રિય સે લેકે સંગી પંચેન્દ્રિય, ઓર સંગી પંચેન્દ્રિય મેં મન રહિત વાલે ઓર મન સહિત વાલે. જે જીવ પોતાનો ત્રિકાળી સ્વભાવ ચૂકી આડોડાઈ કપટ દંભ સેવે છે તેના ફળમાં ઢોર ગતિ પ્રાપ્ત કરી ઢોર રૂપે અવતરે છે. માણસના શરીર ઊભા છે જ્યારે ઢોરના શરીર આડા છે. પૂર્વે આડોડાઈ કરેલી તેના ફળમાં તે જીવો આડા શરીરવાળા તિરંચ રૂપે અવતરે છે. જે જે જાતના ભાવ કરે તે જાતનું ફળ આવે છે. નિજ ક્રિયાનું ફળ નિજમાં આવે છે. શુભાશુભ ભાવ જીવ પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશમાં કરે છે તેનું ફળ પોતાની પર્યાયમાં આવે છે. અભી ક્યા બતા રહે દેખો, યે શુભાશુભ ભાવ જો હૈ એ સ્વયં કે અસંખ્ય પ્રદેશ મેં હોતા હૈ એસા. ઓર હમને ક્યા માના કે હમ મન સે સોચતે હૈ ઓર શુભ કરતે હૈ, સોચ સમજ કર શુભ ભાવ કરતે હૈ. ઓર અશુભ ભાવ વો તો હો જાતા હૈ, વો હમ થોડી કરતે હૈ. હા, લેકિન યહાં કહે રહે અસંખ્યાત પ્રદેશમાં, તો એ અસંખ્યાત પ્રદેશમાં કરે છે એ હમ પ્રૂવ કરના હૈ હમકો. આપ કર સકેગી? હા યા ના? મેં જવાબ દો નહીં. આપ બેન નહીં, આપકા હુઆ નહીં, દોનો કા અભ્યાસ કોઈ બાત નહીં. હમારે ક્યાં નામ હૈ વિનેશભાઈ બતાએંગે. દેખો ક્યાં લિખા હૈ, ફિર સે પઢતા હું મેં. શુભાશુભ ભાવ જીવ પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશમાં કરે છે. અસંખ્ય પ્રદેશમાં જીવ શુભાશુભ ભાવ કરતા હૈ, એ કૈસા પ્રૂવ કરેંગે? હા આગે, લેકિન ઉસકો આપકો પ્રૂવ કરના હૈ. દેખો બાત એસી હૈ, આપ બતા રહે. હા તો देखो देखो, पहले ये नक्की करो, शुभाशुभ भाव जो है वो कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण। जो गुण होता है वो द्रव्य के संपूर्ण भागों में रहता है और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, यानी पूरे पूरे भाग में शुभाशुभ परिणाम होते हैं। हम तो ऐसा ही सोचते हैं कि हम बिल्कुल सोच कर शुभ भाव करते हैं, और हमको इलेक्ट्रिक का करंट लगा तो इधर ही ज्ञान हुआ, पूरे शरीर को ज्ञान हुआ नहीं, ऐसा मानते हैं। शरीर को यानी शरीर में रहा हुआ आत्मा को। तो ये क्यों हमारी ऐसी मान्यता हो रही है? क्योंकि हम गुण की परिभाषा नहीं जानते हैं। गुण की परिभाषा जानेंगे तो ये उत्तर सहज आएगा। क्या कहा फिर से? जी, शुभाशुभ भाव जीव पोताना असंख्य प्रदेश में करे छे, तेनू फल पोतानी पर्याय में आवे छे, तेनू फल बार संयोगों में आवतू नथी। माटे आई कहे छे के आडोडाईनी तथा विकारी पर्यायनी रुचि छोड़ ने ज्ञानानंद स्वभावनी रुचि कर। वळी नरकना जेटला भेदो छे तेटला नारकीना जीवो छे। नरक सात छे तो नारकीना जीवो सात प्रकारना छे। ते जीवो मांस खाए छे, दारू पीए छे। जे जीवो मांस खाए छे, दारू पीए छे, शिकारादि करे छे, ते नरकमां जाए छे। पण त्यां पोताना त्यां पण पोताना भावने भोगवे छे। क्षेत्र तो निमित्त मात्र छे। यानी क्या कहना चाहते हैं कि नीचे के खाली तो क्षेत्र तो निमित्त मात्र छे, यानी ये स्वयं ऐसे परिणाम करता है और स्वयं डरता है, संयोगों से दुख होता है ऐसा मानता है। लेकिन उसी पहले तीन नरक में तो देवगति के जीव भी जाते हैं और उसमें आपस में झगड़ा कराते हैं, तो उनको तो वहां का संयोग कुछ तकलीफ नहीं करता है। ख्याल में? तो यहां क्या कह रहे हैं? देखो, त्या पण पोताना भाव ने भोगवे छे, क्षेत्र तो निमित्त मात्र छे। स्वभाव ने चूकी ने जे भाव थाय ते बधा चार गति में रखड़वाना भाव छे। मारा विना आनु काम थशे नहीं एम माननार जीव सामा पदार्थोनू स्वतंत्रपणू चूकी जाए छे। अपने पे लगा के देखना, क्या हम ऐसा नहीं मानते कि मेरे बिना ये घर चलता ही नहीं है? मैं खाना नहीं बनाऊं तो कौन खावे? पुरुष सोचता है कि मैं पैसा नहीं कमाऊं तो कैसा ये लोगों का नाटक चलेगा? आज इधर जाना है, आज उधर जाना है। कहाँ? महाबलेश्वर। अच्छा, महाबलेश्वर जाना है तो मैं पैसा कमा तो इसलिए सब होता है, ऐसा मानता है वो। तो क्या कह रहे हैं? सामा पदार्थों स्वतंत्रपणु चूकी जाए छे। कोई पन पदार्थ वर्तमान कार्य विना होता नथी। यानी प्रत्येक पर्याय उत्पाद व्यय ध्रुव स्वरूप है। यानी उत्पाद भी उसमें होगा, उसमें व्यय भी होगा। यानी उत्पाद होता है यानी पर्याय उत्पन्न होती है यानी कार्य होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? कोई पन पदार्थ वर्तमान कार्य विना होता नथी। बधा जड़ ने चेतन पदार्थो, ये बधा जड़ ने चेतन पदार्थो, यानी किसको लेना बेन? मनीषा बेन, जीव और पुत्र। आप क्या कहती ब्रह्मा? आपको डिवाइड करो उसको। हाँ, बहुत अच्छा। अभी उन्होंने क्या बताया? उल्टा पुल्टा बताया, कोई बात नहीं, लेकिन नाम तो बराबर गिने। क्या कह रहे? देखो, ने बधा जड़, यानी जिसको हम कहेंगे पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, ये जड़ पदार्थ है। अने चेतन बधा कार्य संपन्न छे, यानी प्रत्येक पर्याय में अपनी, प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी पर्याय होने की योग्यता कहो, क्षमता कहो, शक्ति कहो, प्रत्येक द्रव्य में है। और हम ही ऐसा मानते हैं, पुद्गल तो कुछ समझता नहीं है, मैंने ऐसा रखना छोड़ के उसने ऐसा रखा तो मैं उसको ऐसा रखता हूँ। अपने घर में मेहमान आते हैं कुछ कारण सर, तो अपन घर को कैसा सजाते हैं और ऐसा मानते हैं कि किधर कचरा तो नहीं है ना, अभी सब ठीक ठाक है ना। तो हमने ऐसा माना कि उन पुद्गल को क्या समझता है किधर रहने का, हम उसको ठीक ठाक रखते हैं। फिर वो फ्लावर पॉट में फूल ऐसा उसको ऐसा ऐसा क्या क्या नखरा करते हैं और मानते हैं कि हमने किया। यहाँ क्या कह रहे हैं कि बधा पदार्थो कार्य संपन्न छे छता तेनु कार्य मारा बिना नहीं थाय एम मानी चैतन्य स्वभाव ने चूके छे ने राग ने अहंकार नी भावना करी चार गति मा रखड़े छे। देखो मैं तो हमेशा ऐसा ही कहता हूं, ये रावण जो था ना, रावण वो जैनी था आपको मालूम है, तो उसने क्या किया कि सीता का हरण किया और ऐसा मन में चाहा ये सीता जैसे राम पर प्रेम करती है वैसे उसके परिणाम मेरे पे हो जाए, और उसके मन लुभाने के लिए क्या नहीं किया उसने, सब कुछ किया। इसको साम दाम दंड भेद बोलते हैं, सब प्रकार उसने कोशिश की लेकिन सीता के परिणाम जरा भी विचलित नहीं हुए। तो एक सीता के परिणाम को बदलने की कोशिश में उसको क्या मिला मालूम है बहन, तीसरा स्वर्ग नरक मिला। और हम दुनिया के कितने लोगों के, कितने घर के लोगों के परिणाम बदलना चाहते हैं, साथ ही नरक है, अब क्या करें। क्या क्या कहा, देखो देखो कि तेनु कार्य मारा बिना नहीं थाय मानी चैतन्य स्वभाव ने चूके छे ने राग ने अहंकार नी भावना करी। हम राग भी करते और अहंकार भी करते कि मैं कर सकता हूं, चार गति मां रखड़े छे। तो हम कहां जाना है नक्की करना, चार गति में जाना है पंचम गति में जाना है, आत्मा सिवाय बीजा तत्व छे के नहीं, वस्तु छे तो तेनु कार्य छे के नहीं, के कार्य विना नहीं छे, कार्य विना नहीं होय तो ते वस्तु कूटस्थ, कूटस्थ एटले अपरिणमनशील, એટલે જેનું પરિણમન નહીં થાય એને કુટસ્થ કહેવાય છે। પણ એમ વસ્તુ સ્વરૂપ નથી માટે પરનું કરવારૂપ અહંકાર છોડીને જ્ઞાતા સ્વભાવની રુચિ કર અજ્ઞાની। ચોવીસે કલાક અહંકાર કરે છે, શરીર પરમાણુઓની અવસ્થા છે, તેનું કાર્ય તેનાથી થાય છે, તે પરમાણુઓ કાયમ રહીને પલટે છે, તેને જીવ બદલાવે એમ બને નહીં। ક્યા કહે રહે, યાને હમ તો એસા માનતે કે મેરે કો બીમારી હો ગઈ તો જલ્દ સે જલ્દ કભી અચ્છી હો જાય ઉસકે લિયે ઇન્જેક્શન લેંગે, ક્યોંકિ મેં જાનતા થા કે ઇસકો રાત કો કભી દેરી સે આને કા હોવે, યહી ડિસ્પેન્સરી થી અપની યુનિયન બેંક કે બાજુ મેં। लेकिन मैं वडाला से दुकान से आता था जल्दी, देखा था अभी दुकान खुली है, मतलब डिस्पेंसरी, तो बैठता था कि लोग कहते थे डॉक्टर मेरे को ऐसा दवा दो कि मेरा ताव कल के कल उतरना चाहिए, इंजेक्शन देना, पैसे की फिक्र मत करना। यानी वो ऐसा मानता है कि शरीर की जो बीमारी है वो दवा से ठीक हो जाएगी, लेकिन वो जब ठीक होना सो होगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कहते हैं आपको सर्दी हुई है ना, हाँ हाँ सर्दी हुई है, बोले देखो फला फला धाम दवा करो, सात दिन में ठीक हो जाओगे, और कोई भी दवा मत लो तो हफ्ते में ठीक हो जाओगे। क्योंकि रोग हुआ है, मान लो कोई बीमारी आई है वो पूछ पूछ के तो नहीं आएगी, और कोई भी बीमारी पूछ पूछ के भी जाएगी नहीं, जब आनी है तब आएगी, जानी है तब जाएगी। लेकिन हम उसके लिए बहुत क्या कहते हैं कोशिश करेंगे तो हम पर को परिणमाने का भाव करते हैं। क्या कहा देखो, शरीर परमाणुओनी अवस्था छे, पहली लाइन, तेनु कार्य तेनाथी थाय छे, ते परमाणुओ कायम रहीने पलटे छे, तेने जीव बदलावे एम बने नहीं। जीवे परतत्वना कार्य कर्या नथी ने करतो पण नथी, छता अज्ञानीए एक समय मात्र पण परनो अहंकार छोड्यो नथी। पोतानो आत्मा सिद्ध समान एक रूप छे तेनी भावना छोड़ीने अनेकतानी भावना करे छे ते गतिमा रखड़े छे। दरेक द्रव्य त्रिकाल छे तेना गुणों त्रिकाल छे तेनु क्षेत्र त्रिकाल छे तेनी कर्यायनो काल एक समयनो छे। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। देखो बेन तेनी पर्याय ते तेनु कार्य छे। जो कार्य विनानु तत्व माने तो तत्वे शुं कईरुं? चौवीसे कलाक धारावाही अहंकार अज्ञानीए कईरो छे। पोते ज्ञान स्वभावी छे एवी रुचि करतो नथी तेथी कर्म उपार्जन करी रखड़े छे। नग्न दिगंबर मुनि थयो छतां हूँ नग्न थई शकूं छूं परद्रव्यना ग्रहण त्याग करी शकूं छूं एवी मान्यताना कारणे ते जीव मिथ्या दृष्टि छे ने मोटो भोगी छे। योगी नथी भोगी छे। चार गत क्या कह रहे हैं कि मैं नग्न हो सकता रह सकता हूँ। ये देखो मैंने सब शरीर अपने शर्ट कपड़े को जो कुछ होंगे वो मैंने उतार के फेंक दिए तो क्या वो वर का त्याग कर सकता है जीव? अरे शरीर शर्ट को हाथ नहीं लगा सकता है क्योंकि हाथ में और ये शर्ट में कौन सा अभाव है भाई? शर्ट में और हाथ में तो जिसका अभाव है उसका कार्य करे। लेकिन हम तो ऐसे ही मानते कि हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया वो। अरे वो था कब तेरा तो उसने छोड़ दिया तेरा। इसलिए क्या कह रहे देखो छतापन हूँ नग्न थई शकूं छूं परद्रव्यना ग्रहण त्याग करी शकूं छूं एवी मान्यताना कारणे ते जीव मिथ्या दृष्टि छे। परनो कार्य हूँ करी शकूं छूं माने छे ने तो मान्यतामां भूल छे ने मोटो भोगी छे। चार गतिमां रखड़े छे ज्यां उभो छे त्यां परने लीधे तथा संयोगोने लीधे कार्य थाय छे एम मानी रह्यो छे। शुद्ध चिदानंदनी भावना चूकी पुण्यपापनो अहंकार करतो परना कार्य माराती थाय एम मानतो स्वभावने चूकतो कर्म बांधे छे। अज्ञानी जीव परना कार्य हूँ करी शकूं छूं एम मानी रह्यो छे। दुकानना शरीरना सगा आदिना काम हूँ करी शकूं छूं एम अहंकार करे छे। संयोगो अने संयोगी भावो विनाना शुद्ध स्वभाव ने ते जानतो नथी। अभी इसमें एक प्रश्न ऐसा है संयोगो और संयोगी भाव इसका अर्थ क्या लेना मिली भाई आप बताएंगे? जो संयोग में आए हुए ऐसे बाहर के पदार्थ बहुत अच्छा भाई साहब ने बराबर बताया। संयोगी भाव यानी जीव के परिणाम है वो भी कैसे विभाव परिणाम है तो मोह राग द्वेष के परिणाम वो संयोगी भाव है। यानी पैसा मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई और ये चटनी बटनी कौन कहता है? हम तो 56 भोग खाते ऐसा मानते क्यों क्या कहा? देखो संयोग हो सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ पैराग्राफ की अने संयोगी भावो विनाना शुद्ध स्वभाव ने ते जानतो नथी। यानी संयोग जो होते हैं वह तो बिल्कुल भिन्न पर पदार्थ है। संयोगी भाव जो है वो स्वभाव भाव नहीं है विभाव भाव है। क्या कह रहे हैं? ये विनाना शुद्ध स्वभाव ने ते जानतो नथी अने अनेक प्रकारना भावो करीने जुदा जुदा भाव धारण करे छे। कोई मनुष्यमाती देव थाय कोई मनुष्यमाती मनुष्य थाय ढोरमाती ढोर थाय एम अनेक विचित्रता वाला भवो धारण करे छे। एक रूप रहतो नथी जेवा भाव करे तेवी गति ने प्राप्त करे छे। यहाँ एक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ मनुष्य गति और तीरंज गति में से चारों गति बांध सकते हैं। यानी मनुष्य में से मनुष्य मनुष्य में से देव मनुष्य में से नारकी मनुष्य में से तीरंज और तीरंज में से तीरंज तीरंज में से मनुष्य तीरंज में से देव तीरंज में से नारकी। तो ये दो ही गतियां ऐसे कि चारों गति में घूमने की उसके चांसेस है। अब यहाँ क्या कहते हैं? जो देव गति का जीव होगा वो देव गति में से दोबारा इमीडिएटली नेक्स्ट भव देव का नहीं बांध सकता, और वो नरक भी नहीं होगा, और नारकी भी, नारकी में से दोबारा नारकी न होवे और देव गति भी न बांधे, ऐसा होता देव भव को। लेकिन ये मनुष्य और तीरंचों में ही चारों गति में जाने के चांसेस है। आयु गति नाम कर्मणा उदय थी
दे,
आयु गति नाम कर्मना उदय थी तेवादिक पर्याय थाय छे, तेथी ते पर्याय नु अनात्म स्वरूप बतावे छे।
हेलो 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 हाँ 119 गदिनामे आवुसे चते विखलु पावुन्नन्ति अन्नम गदिमावुसं सले सवसा क्षीणे पूर्व निबद्धे गतिनामनि आयुषी चते विखलु प्राप्नुवन्ति चान्यां गतिमायुष्कं सले सवसात् गतिनामने आयु पूर्व निबद्ध जाक्षय आय चे त्या अन्य गति आयुष्य पामे जीवनि जले शावशे।
क्या कहते देखूं, पूर्वबद्ध गति नाम कर्म अने आयुष कर्म क्षीण थता जीवो पोतानी लेशाने वश खरेखर अन्य गति अने आयुष्य प्राप्त करे छे। यहाँ पर लेश के कारण से वो कौन सी गति में जाएगा इसकी बात बता रहे। पूर्व निबद्धे यानि पूर्वबद्ध गति नामनी आयुषीच गति नाम कर्म अने आयुष्य कर्म क्षीण थता क्षीणे एटले क्षीण थता ते अपि जीवो स्वलेशावशात पोतानी लेशाने वश खलु खरेखर अन्याम गतिम आयुष्कम च अन्य गति अने आयुष्क प्राप्नुवंती प्राप्त करे छे।
तात्पर्य अर्थ गति नाम आयु कर्म निवृत्तत्वात् देवत्वादीनाम अनात्म स्वभावत्वम दर्शयति। क्या कहते हैं, यानी ये जो देव आदि जो पर्याय हुई है मिली है वो किसके कारण उत्पन्न हुई है, किसने रचना की उसकी, तो गति नाम कर्म और आयुष कर्म के कारण, यानी वो कर्मों का कार्य है जीव का नहीं है। क्या कहते हैं देखो, गति नाम आयु कर्म निवृत्त, निवृत्त ने उससे रचित है, उससे निवृत्त कौन सा देवत्वादी नाम, यानी देवत्वादिकों के ये इन कर्मों के कारण उत्पन्न हुए है, उसके उनकी रचना हुई, इसलिए अनात्म स्वभावत्वम दर्शयती, वो अनात्म स्वभावी है, ये आत्मा का कार्य नहीं है, ये कर्मों के निमित्त से उत्पन्न हुई बात है, इसलिए उसको अनात्म स्वभावी कहा। अथवा दूसरी बात बता रहे, ये केचन वदंती न अन्य दृश्यम जगत, कोई ऐसा कहते हैं कि अन्य कोई जगत दिखाई नहीं देता है, आप तो नारकी की और देवों की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई दिखाई तो नहीं देता है। देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर फिर से पढ़ती हूँ। ये गति नाम और आयु कर्म के कारण उत्पन्न होने के कारण देवत्वादी जो है उनके अनात्म स्वभाव पाया जाता है। अथवा जो कोई ऐसा कहते हैं कि अन्य कोई जगत दिखाई नहीं देता, देवो मृत्वा देव एव, मनुष्या मृत्वा मनुष्य एव इति तन निषेधार्थम, यानी मनुष्य मरकर मनुष्य होते हैं, देव मरकर देव ही होते हैं, ऐसा कोई अगर कहते हैं, अन्य अन्य जगत तो नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा कोई कहता है तो उसका कथन का निषेध करने के लिए यहाँ बता रहे हैं। क्रमेण दत्तफले क्षीणे सति, यानी क्रम से दत्तफल यानी जो कर्मों का फल वो मिल गया ना, दत्त यानी दिया, वो दिया हुआ फल अभी उसका क्षीण हुआ, यानी कर्मों का उदय आकर वो फिर गया कर्म, यानी जो फल देना था वो दे दिया उसने, तो क्षीणे सति यानी वो क्षीण होने पर, यानी फल देकर जो क्षीण होते हैं कौन, कर्म। तस्मिन तो कहते पूर्व निबद्धे यानी पूर्वोपार्जिते, पूर्व में बंधे हुए, पूर्व में जो उपार्जित किए हुए कौन, तो गति नाम कर्मणि आयुषिच, यानी गति नाम कर्म में और आयुष्य में, चतेपि खलु ते जीवाहा, यानी किसमें वो फल मिला है या किसने फल दिया है, तो पूर्व निबद्ध कर्मों का फल भी मिला है और वो कर्म क्षीण होकर चले गए। अब ऐसे जो जीव है, तेपि खलु ते जीवाहा करता रहा, खलु यानी स्फुटम प्राप्नुवंती, यानी ऐसे वो जीव है वो प्राप्त करते हैं, किसको प्राप्त करते हैं, किम अन्यत अपूर्वम मनुष्य गति अपेक्षया देवगत्यादिकम भवांतरे गति नाम आयुष्कम च, यानी वो जीव क्या प्राप्त करते हैं, तो कहते कि अन्य गति को प्राप्त हो जाए, मनुष्य गति की अपेक्षा देवगति आदि अन्य गति को प्राप्त करते हैं, अन्य मनुष्य गति को प्राप्त करेंगे, यानी अन्य भव में गति और आयुष्य नाम कर्म का फिर दूसरे कर्म का उदय चालू हो जाता है उनका। कथम भूता संता, क्या होते हुए उनको अन्य गति और अन्य वो मिलती है, तो कहते स्वकीय लेशावशाहा स्वकीय परिणाम आधीना इति, अपने ही लेशा के, स्वकीय यानी अपने ही लेशा के वश, लेशा का अर्थ क्या है, कषाय और योग, कषाय से अनुरंजित योग, जो कर्म का बंध होता है कषाय से स्थिति अनुभाग बनते हैं और योग से वहाँ पर प्रदेश प्रकृति बनती है, तो ये जो कर्म का बंध होता है वो लेशा से होता है क्योंकि उसमें दोनों आ गए कषाय और योग। यहाँ क्या कहते हैं, दूसरी भाषा में अपने ही परिणाम के कारण उसको अन्य गति मिल जाती, क्योंकि अपने परिणाम के कारण अन्य गति और अन्य आयुष बांधता है और फिर वहाँ चला जाता है, क्योंकि अभी ये सभी हम जो मनुष्य पर्याय में हैं, तो हमने पूर्व में बांधी थी मनुष्य गति मनुष्यायु, अभी ये हम इसका उदय चल रहा है, अभी उदय चल रहा है तो ये तो इसको एंड है ना, ये तो लिमिटेड बांध के आए, तो जितनी आयु है तब तक ये मनुष्य गति और मनुष्यायु का उदय चलेगा, अब उसका तो फिर गया सभी, तो उसके पहले ही नेक्स्ट बहु संबंधी जो कि अपने परिणाम के वश अन्य गति अन्य आयु को बांधेंगे और वहाँ उसको भोगने के लिए वहाँ चले जाएंगे। तो कहते तद यथा, वो इस प्रकार है, यानी लेशा किसको कहते, इसलिए वो कृष्ण लेशा का कुछ वर्णन कर रहे हैं। चंडोण मुनय वेरम भंडनशीलो ये धम्म दय रहियो दुठो सण एदि वसम लखन मेयम तो किन्नस। कृष्ण लेशा का कोई यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वो चंड है, यानी वो वैर नहीं छोड़ता, न मुई वेरम, और कैसा है भंडनशीलो, यानी जो जिसको कहेंगे कि झगड़ालू है, भंडनशील भांडखोर मराठी में कहते भांडखोर है, भंडन ये मराठी में झगड़ा करने के लिए भांडन ऐसा शब्द आता है, यहाँ भंडन शब्द आया, यानी जो झगड़ालू जिसको हम कहते हैं। धम्म दया रही हो, ये दया रहित है, दुष्ट है और वो किसी के वश नहीं होता है, ये लक्षण कृष्ण लेशा का है इत्यादि रूपेण, ये तो बहुत शॉर्ट में बताया है। तो इसी तरह से कृष्णादि षड लेशा लक्षणम, कृष्ण आदि जो छह लेशा है उसके नाम तो मालूम है ना, हाँ दक्ष भे कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, हाँ उसको तेजो भी कहते, तेजो लेशा भी कहते, तो इन छह लेशाओं का लक्षण गोमठ शास्त्रादौ गोमठ शास्त्र आदि शास्त्रों में विस्तरेण भणितम आस्ते, विस्तार से बताया हुआ है। तदत्र न उच्यते, उसको यहाँ नहीं बता रहे। कस्मात, क्यों नहीं बता रहे हैं? अध्यात्म ग्रंथत्वात्, ये अध्यात्म ग्रंथ होने से वो लेशाओं का बहुत विस्तार से वर्णन यहाँ नहीं करेंगे। तथा संक्षेपेण अत्र कथ्यते, इसलिए ये संक्षेप से यहाँ बता रहे हैं। कषाय उदय अनुरंजिता योग प्रवृत्ति ही लेशा, कषाय के उदय से अनुरंजित, अनुरंजित है रंगी हुई, हा? जो योग की प्रवृत्ति है उसको लेशा कहते हैं, ये लेशा की परिभाषा है। साच शुभाशुभ गति नाम कर्मण आयु कर्मणश्च बीजम इटले कारणम भवति, यानी वो जो लेशा है वो क्या है कि शुभाशुभ गति नाम कर्म के और आयु कर्म के वो बीज है या उसका कारण है, यानी उसके कारण वो बंधे जाते। तेन कारणेन तद विनाशः कर्तव्यः, इसलिए उनका विनाश कर्तव्य है किसका, लेशा का। यानी लेशा उत्पन्न न हो ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब लेशा है तो वही कर्म का बंध होगा ही होगा। इसलिए कथम इति चेत, वो किस प्रकार से है, तो कहते हैं क्रोध मान माया लोभ रूप कषायोदय चतुष्कात भिन्ने, यानी क्रोध मान माया लोभ रूप जो कषाय जो चतुष्क है ना उसके उदय से भिन्न, यानी क्रोध मान माया लोभ के उदय रूप जो चार कषाय है उससे भिन्न, ऐसा क्या है? अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चतुष्कात अभिन्न, यानी जो क्रोधमान माया लोभ रूप से वो राग आदि से जो भिन्न है जुदा है, और जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चतुष्क से जो अभिन्न है, ये अपने स्वभाव की बात करें। परमात्मनि, ऐसा जो परमात्मा स्वरूप यानी मैं स्वयं शुद्धात्मा, जो अभी हमने नियमसार में देखा शुद्ध भाव, उसमें शुद्ध परमात्मनि यानी इस परमात्मा में यदा भावना क्रियते, जब ये भावना करता है यानी जब उसमें लीन होता है, जब उसमें रममान होता है, जब उसमें एकाग्र हो जाता है, तदा तब कषायोदय विनाशो भवति, तब कषाय उत्पन्न नहीं होते। क्या कहा? अपने स्वभाव भाव में जब लीन होता है तब कषाय उत्पन्न नहीं होते। तद भावनार्थम एव, और उसके भावनार्थ से भावना से ही शुभाशुभ मनोवचन काय व्यापार परिहारे सति, यानी उसके कारण शुभाशुभ जो मनोवचन और काय के व्यापार का परिहार हो जाता है। पेज नंबर 43, अभी वो जैसा नाचे की टीका जो है ना नीचे से दूसरी लाइन, योगत्रया भावश्चेति, ये तीन योगों का भी अभाव होता है। फिर से देखो यहाँ क्या पूछा था कि ये जो पहले जो गति और आयुष्य नाम कर्म का उदय होकर उसको क्षीण हो जाता है उदय देकर, फिर जीव अपने परिणामों के कारण अपने लेशा के कारण नई गति और आयु बांध लेता है, और फिर ये ऐसा ही चक्र चल रहा है, हर भव में ऐसा ही चल रहा है, नई नई गति का और आयु का बंद करता है और अन्य अन्य गति में जाता है। तो कहते हैं इसलिए क्या करना चाहिए, तो ये कषायों का विनाश करना चाहिए। तो ये विनाश कैसा होगा उसके बाद बता रहे थे कि क्रोध मान माया लोभ रूप जो कषाय है उससे जो भिन्न है, और अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चतुष्क से जो अभिन्न है, ऐसा जो परमात्मा स्वरूप मैं स्वयं अपना स्वभाव भाव, तो उसमें जो भावना करते हैं ना उसमें एकाग्र होते हैं, तब कषाय के उदय का विनाश हो जाता है, और उसके ही कारण शुभाशुभ जो मनोवचन काय व्यापार का परिहार हो जाता है, क्योंकि अपने में स्थिर हो जाता है वो, तो अन्य कुछ इनकी क्रियाएं रुक जाती है, तो इन योग त्रयों का भी अभाव होता है। इसलिए कषायोदय रंजित योग प्रवृत्ति रूप लेशा विनाशः, हमने कषाय का भी अभाव हुआ और योग रूप प्रवृत्ति भी रुक गई, और हमें लेशा किसको कहते हैं, कषाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, यानी लेशा नहीं रही, तो लेशा का अभाव हुआ, लेशा विनाशः तद अभावे, और लेशा का अभाव होने पर गति नाम आयुष कर्मणो हो अभाव, गति नाम और आयुष कर्म का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि लेशा का अभाव हुआ तो अभी वो भी नहीं बंधेंगे। तयोः अभावे और उनके अभाव से अक्षय अनंत सुखादि गुणस्य मोक्ष लाभ इति सूत्राभिप्राय है। और उनके अभाव होने पर न गति रही न आयुष रहा, तो उनके अभाव होने पर अक्षय अनंत सुखादि गुण रूप जो मोक्ष का लाभ हो जाता है, इस तरह ये सूत्र का अभिप्राय है।
देखो यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि मोक्ष में क्या होता है, तो अक्षय अनंत सुख यानी ऐसा सुख के जिसका कभी क्षय नहीं होवे, हमेशा सुख स्वरूप ही जो है अक्षय अनंत, क्योंकि अनंत भी दो प्रकार के होते हैं, एक सक्षय अनंत यानी क्षय सहित वाला अनंत और एक अक्षय अनंत यानी जिसका अंत कभी नहीं होता है। ऐसे अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति मोक्ष में होती है, ऐसा सूत्र का अभिप्राय है। अभी हम यहीं रुकेंगे, अनुवाद कर लेंगे। जावाणी के ज्ञान तई सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।